जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री वृंदावन धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सर्वे
शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः नापरः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत गुणमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कथा के पिछले दो दिनों में हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 34वें अध्याय की चर्चा कर चुके हैं जिसमें कि प्रमुखतः दो लीलाओं का वर्णन है। पहली लीला ये है कि नंद महाराज श्री कृष्ण और अन्य ब्रजवासियों के साथ में वृंदावन से अंबिकावन जो कि गुजरात में है गए, जहाँ की शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, तीर्थ स्थान है, अंबिका देवी या दुर्गा देवी का मंदिर भी वहाँ है। और वहाँ जब सरस्वती नदी के तट पर रात को विश्राम कर रहे थे तो एक विशाल सांप ने नंद महाराज को निगलना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण ने आकर अपने पिता को बचाया, उस सांप का वध कर दिया और साथ साथ में उसका उद्धार भी कर दिया। और वो सांप वास्तव में एक विद्याधर थे जिनका नाम था सुदर्शन, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में कोई श्राप किया था, कोई पाप अपराध किया था, जिसके कारण उनको ये श्राप मिला था ऋषियों द्वारा। अब वो उस श्राप से मुक्त हो गए थे और ब्रजवासी गण वापस लौटते समय श्री कृष्ण का आदर पूर्वक गुणगान करते आए। लौटने के बाद शिवरात्रि के बाद थोड़ा समय और बीत गया था, फिर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की तिथि आई जिसको हम लोग गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उस समय ब्रज में होलिका पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध थी वहाँ पे श्री कृष्ण बलराम ने गोपियों के साथ में और अन्य ग्वाल बाल मित्रों के साथ होलिका या होली का उत्सव मनाया। होली के उत्सव के बारे में भी कल हम चर्चा कर चुके हैं और होली के खेल के समय अन्य भी छोटी छोटी लीलाएं हुई जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, परंतु आचार्यों ने इनका वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। यथा कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में या श्रील जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में इत्यादि। श्रीमद् भागवत में न तो होली के महोत्सव का वर्णन है और न श्री कृष्ण के बांसुरी चोरी किए जाने की, फिर भी संक्षेप में इन दोनों का वर्णन हमने कल किया। और श्री कृष्ण के बांसुरी के चोरी होने के बीच में जब चोरी हो गई थी और इससे पहले कि कृष्ण अपने बांसुरी को फिर से ढूंढ लिए, शंखचूड़ नाम का एक यक्ष जो कुबेर का एक सहायक था वो वहां पे आया, गोपियों को अपहरण करने का प्रयास किया श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण ग्वाल बाल समझकर। गोपियों ने जब जोर से कृष्ण बलराम की सहायता के लिए पुकारा तो दोनों कृष्ण और बलराम ने पीछा किया, बलराम जी रुक गए गोपियों के साथ, श्री कृष्ण ने आगे चल के शंखचूड़ का वध कर दिया और उसके सर पे जो मणि थी जो बहुत अनमोल थी उसको बलराम जी को भेंट दे दी। और हमने ये भी देखा कि कैसे अंत में वो मणि श्रीमती राधा रानी के पास आ गई। तो इस तरह से इस 34वें अध्याय का की समाप्ति होती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 35वें अध्याय की और इस अध्याय का शीर्षक है युगल गीत। विरह की भावना में जो गीत गोपियों ने गाई थी उसे युगल गीत कहते हैं। अब गीत अर्थात गाना, गाना मधुर होना चाहिए नहीं तो गीत कैसे कहलाएगा। यदि कोई कुछ बेसुर गाता है, सुर में ताल में नहीं गाता है, तो फिर उस गीत से अन्यों को प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन केवल ताल और स्वर आदि का मिलाना इतना ही बस एक आदर्श गीत नहीं है, उसमें कुछ मूल्यवान वस्तु का वर्णन होना चाहिए। और विशेषतः जब भगवान का वर्णन, यथा भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण लीला आदि का वर्णन गीत के माध्यम से या गाने के माध्यम से होता है, तो ये गीत की परिपूर्णता है, संगीत की परिपूर्णता है। तो संगीत का यही एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण का गुणगान करना। अब वैदिक साहित्य में और विशेष करके भक्ति मार्ग में भी अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गीत हैं। सबसे प्रसिद्ध गीत क्या है, कौन सा है? भगवत गीता है ना, भगवान ने गाई हुई गीत बहुत प्रसिद्ध है अर्जुन को। उपनिषदों में भी अन्य ऐसे कई गीत हैं, लेकिन विशेष करके यदि हम केवल श्रीमद् भागवत की चर्चा करें तो इस ग्रंथ में भी अनेक गीत हैं, जैसे कि चौथे स्कंद में रुद्र गीत है। राजा प्राचीन बरिषद के 10 पुत्र जिनका नाम प्रचेत था, वो जब तपस्या करने गए थे तो शिव जी का दर्शन हुआ। शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने इन 10 भाइयों को एक विशेष मंत्र या एक विशेष गीत सुनाया। शिव जी जैसा हम सब जानते हैं परम वैष्णव हैं, सतत भगवान के ध्यान में, गुणगान में, कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वो एक गीत हमेशा गाया करते हैं। तो उन्होंने ये गीत प्रचेताओं को सिखाया। और इसलिए ये गीत रुद्र गीत के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे 11वें स्कंद में और एक प्रसिद्ध गीत है, कौन सा है? उद्धव गीत। जब श्री कृष्ण स्वधाम लौटने की तैयारी कर रहे थे, अपन लीलों को उन्होंने लीलाओं को उन्होंने यहाँ समाप्त कर दिया, अब अंतर्धान होने का या उनके तिरुभाव का समय आ गया था, तो मौसल लीला अर्थात यदुओं के परस्पर एक दूसरे से युद्ध करके एक दूसरे को मार डालने की लीला उन्होंने रचाई, क्योंकि यदुवंश का बोझ बहुत भारी हो गया था पृथ्वी के लिए। और श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे स्वधाम लौटने के पहले मेरे कुल को, मेरे यदु कुल को भी वापस ले जाना चाहिए। उस समय केवल उद्धव बचे हुए थे। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की खबर जब पहुंची या उनको जब संशय हुआ, अनुमान लगाया उन्होंने कि अब श्री कृष्ण वापस जाने वाले हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। परंतु श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि तुम बद्रीनाथ जाओ, वहां तपस्या करो, मेरी सेवा करो और अंत में तुम मेरे पास आओगे। लेकिन उद्धव ने और कोई ऐसे आदेश, उपदेश, संदेश श्री कृष्ण से चाहे ताकि वो एक पोषण हो जाए, एक पौष्टिक आध्यात्मिक आहार हो जाए उनके लिए, श्री कृष्ण के विरह को सहन करने के लिए। तो फिर 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय से लेकर प्राय 29वें अध्याय तक ये उद्धव गीता चलती है। बहुत लंबा प्रवचन है भगवान श्री कृष्ण का। हालांकि ये भगवत गीता जितना प्रसिद्ध नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण तो बहुत है। और इस उद्धव गीत के अंतर्गत भी और कई छोटे छोटे गीत हैं, जैसे कि पिंगला गीत। पिंगला एक वेश्या थी और एक दिन पिंगला को विरक्ति की भावना जागृत हुई और इस दुनिया से निराश होकर, इस दुनिया के निष्फलता को जानकर वो अभी इस गीत को गाने लगी। और एक गीत इसमें है जो अवंती ब्राह्मण ने गाई थी, वो भी विरक्त हो गए थे संसार से, जीवन में बहुत बड़े संकट आए थे उनके, अंत में विरक्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपनी अपना गीत गाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से और एक गीत है उद्धव गीता में, जिसको आइल गीत कहते हैं। आइल गीत, आइल पुरुरवा राजा का और एक नाम है। उर्वशी अप्सरा से उनका संबंध था। जब उर्वशी उनको छोड़ के चले गए, छोड़ के चली गई तो उनको पहले तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन बाद में विरक्ति की भावना उनके अंदर भी जागृत हो गई। ये संसार की सही पहचान क्या है, इस संसार के संबंध कैसे हैं वास्तव में, तो मुझे भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार उन्होंने, उनकी ये वृत्ति भी जागृत हो गई और उन्होंने एक गीत गाया जिसके आइल गीत कहते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के और एक भाग में भूमि गीता है। ये सब गीत या गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके अलावा तो और कितने सुंदर सुंदर और गीत हैं। भले जिनको गीता या गीत के नाम से जाना पहचाना नहीं जाता होगा, लेकिन हैं वो सुंदर गीत, जैसे कुंती महारानी द्वारा स्तुति श्री कृष्ण की, ध्रुव महाराज और प्रह्लाद महाराज की प्रार्थनाएं इत्यादि। तो श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा गीत है, बहुत सुंदर मधुर गीत है जो बहुत अर्थपूर्ण है, अर्थदम, न केवल सुनने में बहुत रसमय लगता है, लेकिन जो विषय के बारे में यह गीत है वो विषय भी बहुत लाभदायक है, सबके लिए मनोरम है। श्री कृष्ण के बारे में सुनने से बड़ा सुख मिलता है, बड़ा दिव्य आनंद मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ गीत माना जाता है। और इस बड़े गीत में इसमें 18,000 श्लोक हैं, इनमें ऐसे कई गीत हैं जैसे जिनका वर्णन हमने उल्लेख थोड़ा बहुत अभी किया था। तो श्रीमद् भागवत के दशम, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और आचार्यों का मत ऐसे है कि दशम स्कंद ये सारे श्रीमद् भागवत का सार है, क्योंकि इसमें विशेष करके श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो क्या अन्य स्कंधों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है? अवश्य है, परंतु उनके अवतारों का वर्णन है। निजीय भगवान वृंदावन, मथुरा और द्वारका के श्री कृष्ण का वर्णन इतने विस्तार में नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पहले स्कंद में वर्णन आता है, लेकिन अधिकतर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का ही वर्णन पाया जाता है। लेकिन दशम स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्कंद माना जाता है। तो इस दशम स्कंद में भी विशेष करके वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि वृंदावन की लीलाएं सबसे मधुर मानी जाती हैं। और वृंदावन की लीलाओं में भी बहुत सारे गीत हैं, बल्कि वृंदावन के निवासी तो दिन भर गाया ही करते थे, उनका जीवन ही गीतों से पूर्ण था। जब भी श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर, गवों को लेकर वनवास वन में चरण करने जाते थे, तो ब्रजवासी जो गांव में रह जाते थे वो दिन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। आचार्यों ने ऐसे बताया है कि वृंदावन में ऐसे भी कोई लोग हुआ करते थे जिनका काम ही बस ऐसे था, कविता लिखना। जो भी आज की ताजा खबर, जो भी आज श्री कृष्ण ने कोई लीला की होगी तो उसके बारे में वो कविता की रचना करते थे, क्योंकि ग्वाल बाल खबर लेके रोज आते थे, आज श्री कृष्ण ने ऐसे असुर का वध किया, श्री कृष्ण ने ऐसे दावनल को निगल लिया, तो ये सारी खबरें रोज आती थीं। और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण असुरों का वध कहीं एक बार कभी कर लेते थे, ऐसा नहीं, रोज करते थे। बल्कि हर दिन भोजन के पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक न कोई असुर को मार के ही आते थे। और इसके साथ साथ श्री कृष्ण का नृत्य करना, श्री कृष्ण के अनेक छोटे छोटे बड़े बड़े लीलाएं इतने मधुर हुआ करते थे, चाहे ग्वाल बाल हो या अन्य गोपियां हो, वहां के वर्णन करते थे, कवि कविता लिखते थे, और ब्रजवासी गण फिर खास करके गोपियां मंथन करते समय आदि या दोहन करते समय गायों का एक गीत गाया करते थे। तो प्रेम या भक्ति का संबंध संगीत से या गीत से बहुत गहरा है, और इसका विकृत प्रतिबिंब जो है हम आजकल दुनिया में देखते हैं, सिनेमा में क्या देखते हैं, गीत गाते कब गीत गाते हैं। तो ये विकार है, विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन वास्तविक प्रेम में भी स्वाभाविक रूप से संगीत का उदय होता है हृदय में। भक्ति एक बहुत संगीतमय पथ है, और संगीत से भक्ति का आनंद बढ़ता है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, गोप वृंदे ही वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रागशत गीत कीर्ति ही। जब श्री कृष्ण वन में जाया करते थे, गोप वृंदे ही अपने गोप गणों को साथ में लेकर, मित्रों को साथ में लेकर, तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम, सो उनके चरण कमलों के चिन्हों के कारण वृंदावन की भूमि पावन हो जाती थी, धन्य हो जाता था। और ये ग्वाल बाल जो है उनके साथ में जाते थे गीत कीर्ति ही, उनकी कीर्ति का, उनके यश का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का इत्यादि गान करते थे। तो ये ब्रजवासियों का काम ही ऐसे था, दिन भर जो भी वो कर रहे हों, गायों को चरा रहे हों, अपने घर के काम कर रहे हों, वो कृष्ण का गुणगान किया करते थे। तो वृंदावन के जो 12वें अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में, अभी तक हम वृंदावन के भाग में ही हैं, अभी तक मथुरा पहुंचे नहीं हैं हम, अभी और थोड़ा समय लगेगा, अगले साल शायद हो जाएगा। तो वृंदावन के वर्णन में भी, वृंदावन के लीलाओं के वर्णन में ऐसे भी कई गीत हैं। एक तो जब उद्धव जी मथुरा से वापस आते हैं उस समय भी एक वृंदावन से संबंधित गीत है, जिसका नाम क्या है, भ्रमर गीत, 47वें अध्याय में। तो वैसे शुरुआत से लेकर वृंदावन के श्री गोपियों के गीत जो हैं विशेष करके वो बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वृंदावन के सबसे ऊंचे भक्त गोपियां मानी जाती हैं। तो 47वें अध्याय में भ्रमर गीत है, लेकिन उसके पहले ऐसे भी कई गीत हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। पिछले साल हम रास पंचाध्यायी की चर्चा कर चुके थे, ये 5 अध्याय दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का वर्णन है। अब सारे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद यदि सार है तो ये रास पंचाध्याय साराति सार है, सार का भी सार, ऐसे आचार्यों ने माना है। इस दुनिया में जो सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती है आध्यात्मिक जगत में, वो सर्वोपरि होती है, क्योंकि यहां श्री कृष्ण को लोग नहीं जानते हैं, गोपियों को नहीं जानते हैं, वो गोपियों के दिव्य स्तर को नहीं जानते, नहीं जानते कि गोपियां श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं, और श्री कृष्ण का गोपियों के संग में जो लीला है वो बिल्कुल दिव्य है। जो इस बात को नहीं जानते हैं वो रासलीला की निंदा करते हैं, जिनकी शारीरिक भावना है ऐसे लोग, परंतु जो तत्वज्ञ हैं, जो रसिक भक्त है वास्तव में, वो इन रासलीला के रासलीला को सबसे ऊंचा लीला मानते हैं और श्रीमद् भागवत का सार मानते हैं। तो ये रास पंचाध्यायी के पहले 21वें अध्याय में एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, जिसका नाम क्या है, 21वें अध्याय में कौन सा गीत है, वेणु गीत। आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण है मुरलीधर, मुरली मनोहर, वंशी वदन, मुरली से संबंधित भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो जब श्री कृष्ण शरद ऋतु के आगमन पर वन में प्रवेश कर गए अपने मित्रों को और गौओं को साथ में लेकर, तो वो बांसुरी बजाते बजाते गए और वन में जाकर भी खूब मधुर ढंग से बांसुरी बजाते रहे। अब ये बांसुरी की मधुर ध्वनि गोपियों ने गांव में अर्थात वृंदावन में सुन ली, और एक ऐसा प्रभाव ये बांसुरी की ध्वनि ने गोपियों के हृदय में कर दिया कि गोपियां इस बांसुरी के ध्वनि का गुणगान करने लगी, कि बांसुरी के ध्वनि को सुनकर अनेक तरह तरह के वर्गों के ऊपर क्या असर हुआ, देव देवलोक के निवासियों के ऊपर क्या असर हुआ, गौओं के ऊपर क्या असर हुआ, जो हिरण आदि थे उनके ऊपर क्या असर हुआ, जो पेड़ पौधे थे उनके ऊपर असर क्या हुआ, यमुना जी के जल के ऊपर क्या असर हुआ। तो वृंदा श्री कृष्ण के बांसुरी वदन की महिमा का वर्णन, भावपूर्ण जो वर्णन करती हैं गोपियां, वो 21वें अध्याय में पाया जाता है, इसलिए इसे वेणु गीत कहते हैं। लेकिन रास पंचाध्यायी जो कि 29वें अध्याय से शुरू होती है, उसके अंदर भी थोड़े बहुत गीत हैं, और पहला गीत इसमें ये है जिसको प्रणय गीत कहते हैं। प्रणय गीत वास्तव में 29वें अध्याय में ही है, और विशेष करके 31वें श्लोक से शुरू होकर एक 10 या 11 श्लोक है। ये प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण के प्रणय निमंत्रण जो बांसुरी के द्वारा उन्होंने किया, इसको सुनकर गोपियों ने अपना अपने सारे कार्य छोड़ दिए। जो भी वो कर रहे थे वृंदावन में, वो सारे कार्य छोड़कर और लोक परलोक की मर्यादाओं को भूलकर, वेद शास्त्रों के विधि निषेधों को भूलकर, उनका उल्लंघन कर, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर, वो वहां दौड़ के बीच रात में श्री कृष्ण के संग करने के लिए चली गई। जब वो श्री कृष्ण के सामने आई तो श्री कृष्ण ने अपने वाक चातुरी से उनको वृंदावन में प्रत्यागमन करने का सलाह दिया, प्रत्यागमन अर्थात उनको लौटने का सलाह दिया। तो ये जो वचन थे श्री कृष्ण के, ये वज्र के समान गोपियों को लगे। तो ये वचन वज्र प्रहार जब उनके हृदय में पड़ा तो उससे एक उद्भव हुआ जो गीत है, वो है प्रणय गीत। फिर गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हमें ज्ञान योग आदि ध्यान वगैरह मत सिखाना, ये हमें सब नीति वीति की बातें नहीं करना। तो ये गीत है उनका प्रणय गीत 29वें अध्याय में, और आगे चल के प्रसिद्ध गीत है, वो कौन सा है? गोपी गीत। कौन से अध्याय में है? 31वें अध्याय में गोपी गीत है। तो इसका प्रसंग क्या है कि सर्वोत्कर्ष रासलीला की स्थिति में श्री कृष्ण अकस्मात उनका अंतर्धान हो गया, उनके बीच में से ओझल हो गए, चले गए। और गोपियों ने जब उनको जब समझ में आया कि श्री कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, तो उनको बहुत दुख हुआ और विरह की भावना बहुत तेज हुई, और वो इधर उधर श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते सारे वृंदावन में, वनों में इधर उधर भ्रमण करते रहे। उन्होंने सारे पेड़ों को पूछा, पशुओं को पूछा कि कृष्ण कहाँ है, कहीं भी खबर नहीं मिली कृष्ण की। फिर उन्होंने साथ में मिलकर श्री कृष्ण का गुणगान करना प्रारंभ किया और साथ साथ में श्री कृष्ण की लीलाओं का नकल भी करना शुरू किया। फिर ये गीत जो कि उन्होंने शरद ऋतु में ही गाया था, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है, इसको गोपिका गीत या गोपी गीत कहते हैं। तो पहले था वेणु गीत, दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, और फिर रासलीला समाप्त हो जाती है 33वें अध्याय में, और उसके बाद 34वां अध्याय आ जाता है जब अंबिका वन की यात्रा होती है, सांप का वध होता है, फिर वापस लौट के होली का त्योहार मनाया जाता है, शंखचूर का वध होता है, श्री कृष्ण की बांसुरी चोरी होती है, ये सारी लीलाएं इस समय होती हैं, और फिर ये 35वें अध्याय तक हम पहुंचते हैं। इस 35वें अध्याय में प्रसंग ये है कि रास पंचाध्यायी अर्थात रास लीला तो हो चुकी है, और रात के समय गोपियां रासलीला तो करके कृष्ण का संग तो पाती हैं, परंतु दिन में नहीं पाती हैं, इसलिए उनका हृदय तृप्त नहीं होता है। वो श्री कृष्ण के इतने परम भक्त हैं कि वो श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती हैं, तो वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण का संग दिन के समय भी हमें मिले। तो जब ये संग उनको नहीं मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो गौओं को चराते चराते वन में चले जाते हैं, तो उस समय जो विरह की अग्नि से के उद्भावन से जो गीत वो गाती हैं, वो है ये युगल गीत। ये युगल गीत इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें 24 श्लोक हैं और 12 जोड़ी हैं, दो दो श्लोक के 12 ऐसे जोड़ी हैं, क्योंकि ये जोड़ी है इसलिए युगल गीत कहते हैं इसको। दो दो श्लोकों में उन्होंने ये गीत गाए हैं। और आचार्यों ने बताया है, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये गीत ब्रज के गोपियों ने अलग अलग समय पर इधर उधर ब्रज में खड़े खड़े हुए गीत गाए हैं, फिर इनको सबको मिला जुला कर फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने एक गीत बना दिया है, तो इसे युगल गीत कहते हैं। ये युगल गीत गोपियों के विरह के भावना का प्राकट्य है। और ऐसे भी आचार्यों ने बताया है कि यद्यपि ये रास पंचाध्याय के अंतर्गत परिगणित नहीं है, फिर भी इसका महत्व या इसका संबंध रास पंचाध्याय से बहुत गहरा है, जिस तरह की वेणु गीत का भी है। वेणु गीत भी रास पंचाध्याय में नहीं है और न ही ये युगल गीत, क्योंकि रास पंचाध्याय तो 29वें से 33वें अध्याय में है, वेणु गीत 21वां अध्याय है और ये युगल गीत 35वां अध्याय है। फिर भी आचार्यों ने समझाया है कि ये दोनों और विशेष करके युगल गीत, साथ साथ वेणु गीत भी, वो रास पंचाध्याय के मधुरिमा के वर्धन करती हैं, वृद्धि करती हैं, उनको पोषण प्रदान करती हैं भक्त को, तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और रास पंचाध्याय से इनका संबंध बहुत गहरा है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण की वैजयंती माला पंचरंगी होती है, पांच तरह के रंगों के फूलों से बनी हुई होती है, उसी प्रकार से ये युगल गीत त्रिरंगी है, क्योंकि इसमें जो पहले के और तीन प्रसिद्ध गीत हैं वृंदावन के, उनका सार है, वेणु गीत, प्रणय गीत और फिर गोपी गीत, तीनों का सार इस युगल गीत में है, इस 35वें अध्याय में है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी विचार, जो भी भावनाएं गोपियों ने इन पहले वाले तीन गीतों में व्यक्त किए हैं, उनको भी यही मिला जुला कर यहाँ पर इस अध्याय में गोपियां व्यक्त करती हैं। तो जिन भावनाओं को उन्होंने अनुभव किया था उनका वो चरवण कर रही हैं। तो युगल गीत क्या है, जो वेणु गीत और प्रणय गीत और गोपी गीत के जो समय भावनाएं थी उनका चरवण करना, उनके बारंबार ध्यान करना, यही वृंदावन है। बारंबार निरंतर श्री कृष्ण के लीलाओं का और श्री कृष्ण के रूप का, गुण का इत्यादि ध्यान करना और उनका गीत आदि गाना, तो इसलिए ये युगल गीत इतना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में इस अध्याय के शुरुआत में ही एक बहुत सुंदर परिचय दिया है इस विषय का, और वो बताते हैं कि वास्तव में गोपियां केवल रासलीला करके संतुष्ट नहीं थी, दिन में भी वो श्री कृष्ण का संग करना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे और गोपियां तो गोचारण करने के लिए नहीं जा सकती थीं, उनका शरीर भला नहीं जा सका, लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उनका हृदय श्री कृष्ण के साथ चला गया। शरीर तो था गांव में, वो अपने निहित कार्यों को कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, और इसलिए फिर वो श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहे, श्री कृष्ण के संग से कभी वो अलग नहीं हुए। ये है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक स्तर में केवल शारीरिक निकटता ही सब कुछ नहीं होती है, हालांकि इसमें भी एक तरह का आनंद होता है, परंतु ब्रजवासियों ने और विशेष करके गोपियों ने हम सबको सिखलाया है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, कि कैसे हमें विरह की भावना में श्री कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, उनके पार्षद आदि, इन सब के बारे में हमें ध्यान करना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो यदि हम ऐसे अपना समय बिताएंगे, श्री कृष्ण से एक विरह की भावना का अनुभव करेंगे, और साथ साथ में इस विरह की भावना का अनुभव करते करते हम आलसी नहीं रहेंगे, हम क्रियाशील होकर श्री कृष्ण की सेवा में रत रहेंगे। यदि हम ऐसे करते रहे गोपियों के पद चिन्हों में चल के, तो अवश्य हम भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। तो गोपियां हालांकि वृंदावन में थीं, लेकिन क्योंकि उनका हृदय श्री कृष्ण के पास के साथ गया वन में, इसलिए वो श्री कृष्ण के संग का आनंद पा सकें। तो जब हमारी चेतना श्री कृष्ण में रहती है, तो हम श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होते, और गोपियों ने हमें ये सब सिखलाया है। और इस तरह के एक बहुत ही तीव्र विरह की भावना को हमारे हृदय में जागृत करना, ये चैतन्य महाप्रभु की का विशेष उपदेश है, उनके शिक्षण है सारे दुनिया के लिए, षड गोस्वामियों के लिए भी उन्होंने ऐसे ही सिखलाया है। तो प्रश्न ये आएगा कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं है, तो केवल हृदय से हम उनका संग कैसे कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण का नाम है, कृष्ण का रूप है, कृष्ण के गुण हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण के पार्षद हैं, कृष्ण का धाम है, इनके बारे में सुनने से, ध्यान करने से, बोलने से, पढ़ने से हम श्री कृष्ण के संग में रहेंगे, इसलिए वही आनंद हमें भी मिलेगा जो कि गोपियों को मिला था। फिर प्रभुपाद षड गोस्वामियों का उदाहरण भी देते हैं कि कैसे यद्यपि वो बहुत धनी परिवार से थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे भौतिक जगत में, सब कुछ त्याग कर वो वृंदावन में आए और इतनी तपस्या और सरलता का जीवन वहां पे वो बिताते थे। क्यों ऐसे संभव हुआ उनके लिए? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति विरह की भावना, गोपी भाव रसामृतापि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर, वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। तो गोपियों के भावना के अमृत के सागर के लहरों में वो बहते जा रहे थे, तो वो भी गोपियों के पद चिन्हों में चल रहे थे। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, हालांकि वो मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, मंडलपति श्रेणी बहुत ऊंचे वर्ग के लोग थे समाज में, लेकिन इन सब चीजों को बिल्कुल तुच्छ समझे, तुच्छवत। और त्यक्त्वा तूर्णमशेष, उनको आसानी से त्याग दिया। कौपीन कंथाश्रितौ, फिर उन्होंने साधारण कौपीन और फटा हुआ कंबल आदि धारण किया। तो ये कैसे सब कर पाए? क्योंकि गोपी भाव रसामृत, गोपियों के भावना के रस के अमृत के सागर के लहरों में वो बह रहे थे, तैर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का उल्लेख करके बताते हैं कि षड गोस्वामी ने हम सबको सिखलाया है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथपुरी में रहते समय ऐसे एक आदर्श हम सबको सिखलाया है। कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति सस्ती चीज नहीं है कि हम कहें हाँ अभी हम कृष्ण को प्राप्त कर गए। प्रभुपाद जी अलग अन्य अन्य जगह भी अपने उपदेशों में कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो सहज भक्ति को लेते हैं, उनको सहजीय कहते हैं, प्राकृत सहजीय। तो ये लोग क्या करते हैं, वो वृंदावन में जाते हैं और किसी झाड़ी के पीछे कृष्ण को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। कितनी बार लोग पूछते हैं, अरे हाँ हम वो निधिवन में जाते हैं, सेवा कुंज में जाते हैं, हमने सुना कि वहाँ रात को जाने से राधा कृष्ण दिखते हैं, हम वहाँ कुंज के पीछे जाएंगे तो वो दिखते हैं, क्या ये सही है? और हमने सुना है कि जो लोग रात को वहाँ जाते हैं फिर वो जीवित नहीं आते वापस। तो ऐसी सब बातें हैं, लोग बहुत सस्ता लेते हैं, जैसे कि इन स्थूल आँखों से और इस भक्ति विहीन हृदय से हम क्या जान पाएंगे राधा कृष्ण की लीलाओं को, देखने की बात दूर है, हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो भक्ति या कृष्ण प्रेम इतना सस्ता नहीं है कि हम वृंदावन में जाके निधिवन में गए और किसी पेड़ के पीछे झाड़ के पीछे रात के जाके देखा रासलीला हो रही, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन अनेक लोग ऐसे सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बार बार अपने उपदेशों में समझाया है कि ऐसे सस्ता या हल्का नहीं लेना चाहिए इस चीज को, हमें षड गोस्वामियों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक सुंदर परिचय देते हैं इस अध्याय के लिए और बताते हैं कि शुकदेव गोस्वामी का वर्णन अभी शुरू हो रहा है। पहला श्लोक वास्तव में युगल गीत का नहीं है, ये शुकदेव गोस्वामी केवल एक परिचय दे रहे हैं। तो आइए अभी पहला श्लोक यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या पहले श्लोक तो पहुँचते काफी समय हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, काफी गीत की चर्चा तो हुई। पैंतीसवें अध्याय का ये पहला श्लोक है। श्री शुक उवाच। गोप्य कृष्ण वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण नीला प्रगायन्त्य निन्युर्दुःखेन वासरान् गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्य निन्युर्दुःखेन वासरान् गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् बोलिएगा।
गोप्य कृष्णे वनं याते
गोप्य कृष्ण वनं याते
तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो
कृष्णलीला
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नतापूर्वक अपने दिन बिताती थीं। तो यहां वर्णन है कि कैसे उनका हृदय उनके कृष्ण के साथ में जाता था। हम अभी भी सुन चुके हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि शारीरिक रूप से तो गोपियां श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई, परंतु उनका हृदय जाता था। तो कैसे हृदय जा सकता है किसी का, तो यहाँ इसका वर्णन है, गोप्यः कृष्ण वनम याते। तो जब श्री कृष्ण चले जाते थे याते वनम वन के अंदर, तो गोप्यः अर्थात गोपियां तम अनुद्रुत चेतसः, तो उनकी उनकी जो चेतना है उनके मन तम अनुद्रुत, तम मतलब उनका कृष्ण के, अनुद्रुत मतलब पीछे भागना। तो जब श्री कृष्ण वन में चले जाते थे तो गोपियों का मन या उनकी चेतना श्री कृष्ण के पीछे भागती हुई जाती थी। कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, और जब मन वहां चले जाता था तो यहां बैठे बैठे खड़े हुए जो भी अपने निहित कार्य करते हुए वो क्या करते थे, कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर दुखेन वासरान, और ऐसे दुखेन बड़े दुख से वासरान उनके दिनों को निन्युर बिताते थे। तो प्रगायन्त्यः गायन्त्य और प्रगायन्त्य प्रकृष्ट रूपेण गायन्त्य है, तो बड़े भक्ति भाव से गाते थे, बड़े तीव्रता से गाते थे, हृदय से गाते थे, अच्छी तरह से गाते थे, प्रगायन्त्य है। तो अपना चित्त उनके पीछे भाग जाता था, उनका श्री कृष्ण के पीछे। तो ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण उपदेश है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से माया के पीछे भागता है, लेकिन ये साधन भक्ति के नियमों को, विधि विधानों का पालन करके, विधि निषेधों का पालन करके हम हमारे मन को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि मन संसार के वस्तु और लोगों के पीछे न भागकर कृष्ण के पीछे भागे। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी। जब हम कहीं जाते हैं, भले विश्व कप का क्रिकेट मैच भी चल रहा हो, और हम वहाँ स्टेडियम में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं और फिर भी कृष्ण की ओर मन भागता है, तब हम समझेंगे कि हाँ वास्तव में तम अनुद्रुत चेतसः। नहीं तो घर में भी किसी ने टीवी चालू कर दिया है, सिनेमा देख रहे हैं घर के लोग, और वहां सामने बैठे हुए भी हमारा मन वहां नहीं जा रहा, कृष्ण की ओर भागते हुए जा रहा है। कबे हबे शे दिन हमार, जैसे आचार्य ने कहा कब होगा वो दिन हमारा, कब वो दिन आएगा जब हमारा मन भी इसी प्रकार श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागेगा। ये जीवन की परिपूर्णता है, भागना, मन को भगाना कृष्ण के पीछे। वैसे तो मन भाग ही रहा है माया के पीछे, लेकिन कृष्ण के पीछे भागना है। ऐसे कुंती महारानी की प्रार्थना भी है ना, वो पहले स्कंद में प्रार्थना करती हैं, त्वयी मे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वोघम उदन्मती। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन कब आपके पीछे ऐसे भागेगा, अनन्य विषय, अन्य विषयों को छोड़कर एकाग्र चित्त से केवल आपके पीछे कब भागेगा। असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब हमेशा, सदैव। तो मैं चाहती हूं कि मेरा मन सदैव आपके पीछे पीछे जाए और किसी भी अन्य विषय के प्रति मेरी मति आकृष्ट न हो जाए। तो ऐसी रति मैं चाहती हूं, कैसे, जैसे गंगई वौघम उदन्वती, जिस प्रकार से गंगा जी नदी या समुद्र की ओर बहती जाती है, इधर उधर नहीं देखती है, और कोई बीच में रुकावट आया भी तो वो इधर उधर से किसी न किसी तरह से समुद्र की ओर जाती ही है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में रह के भक्ति करते हैं तो तरह तरह की रुकावटें, अड़चने हमारे जीवन में अवश्य आएंगी, तो हमें भी गंगा जी के बारे में सोचना चाहिए कि रुकावटें आने के बाद भी गंगा जी अपने ध्येय से हटती नहीं है। ऐसे नहीं सोचती कि चलो अभी पहाड़ आ गया बीच में तो अभी समुद्र में जाना छोड़ दो, यहीं पर रह जाती नहीं, फिर भी कोई ना कोई रास्ता बना के निकल जाती ही है और समुद्र की ओर जाकर पहुंच जाती है। ऐसी कुंती महारानी की प्रार्थना है कि मेरा भी चित्त ऐसे क्यों ना हो। तो हमारे चित्त को भी ऐसे हमें बनाना है, साधन भक्ति के अंगों को हमारे जीवन में स्वीकार करके, और इसे विरह कहते हैं। और ऐसे विरह की भावना को जागृत करने का प्रयास करना ही जीवन की सफलता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे, कि हे गोविंद, आपके विरह में एक निमेश का काल भी जो क्षण से भी कम है, 12 वर्ष एक युग के समान प्रतीत होता है। ये युग शब्द का तात्पर्य विभिन्न हो सकता, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन युग शब्द का अर्थ कभी कभी 12 वर्ष का की अवधि भी होती है। तो हे कृष्ण, आपकी विरह में एक क्षण भी 12 वर्ष के समान लगता है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम, और उस समय आपके विरह में सब कुछ शून्य ही दिख पड़ता है और मेरे आंखों से मूसलधार अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो ये एक भावना है। गोपियों ने पहले भी गोपी गीत में एक श्लोक कहा था, अटते भवान अहनी काननम त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुंतलम् श्रीमुखं चते जड उदीक्षताम पक्षम कृदृशाम। गोपिया कहती हैं अटति यद भवान अहनि काननम, जब आप जाते हैं अहनि दिन में काननम वन में, तो उस समय हमें एक विरह की भावना होती है, ऐसा गोपी कहती हैं। यद भवान मतलब आप जब वन में चले जाते हैं, अटति यद भवान अहनि काननम त्रुटिम युगायते त्वाम अपश्यताम, जब हम आपको नहीं देख पाते हैं त्वाम अपश्यताम, पश्यताम मतलब देखना, अपश्यताम मतलब नहीं देखना, तो त्रुटि अर्थात एक क्षण से भी कम जो समय की अवधि होती है वो एक युग के समान प्रतीत होता है। कुटिल कुंतल श्री मुखम चते, फिर आपके हम सुंदर मुखारविंद का स्मरण करते हैं जिसमें कि एक अलका से सुशोभित है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दिशाम, और हम ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि उन्होंने ये आंखों के पलकें क्यों बनाई जिससे कि आपके दर्शन में बाधा होती है। तो ये भावना गोपियों का है, तो जिस भावना में अभी हैं गोपियां इसी भाव में वो ये श्लोक भी गोपी गीत के समय व्यक्त करती है। साथ साथ में श्रीमद् भागवत में भी कि नौवे अंत स्कंद के अंत में बताया गया है, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभग सविलास हासम। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण को कोई देखते हैं तो बहुत मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि श्री कृष्ण का सौंदर्य बहुत विशेष है। यस्य आननम, आननम मतलब उनका मुख मुखारविंद, यस्य आननम मकर कुंडल उनके मकर कुंडल, और साथ साथ में जब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का मुखारविंद भी उनके गाल कैसे चमक रहे हैं, भ्राजत कपोल सुभग सविलास हासम, उनका शरीर बहुत कमजोर है, सविलास हासम उनकी हल्की मुस्कान है, नित्योत्सवम न तत्रिपुर त्रिशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताम कुपिता निमेश्च। फिर इसी श्लोक को इसी भावना को पुनः वो व्यक्त करते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे ये आंखों की रचना की, गलत की ब्रह्मा जी ने, ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि जो वृंदावन के नर और नारियां हैं वो बहुत मुदित हो जाती हैं, बहुत आनंदित हो जाती हैं श्री कृष्ण को देखकर, और श्री कृष्ण का दर्शन करना अर्थात एक उत्सव है। नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृश्य भे पिबंत्यो, तो अपने आंखों से श्री कृष्ण के सुंदर रूप का अमृत का पान नर और नारी दोनों करते हैं। तो जब ऐसे दर्शन नहीं मिलता है श्री कृष्ण का, तो उस समय ये बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये विरह की भावना ब्रजवासियों को सहन नहीं होती है। इसलिए यहाँ कहा गया है निन्युर दुखेन वासरान, जब श्री कृष्ण आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ते थे तो बड़े दुख से वो अपने दिन बिताते थे। लेकिन केवल दुख नहीं, साथ साथ कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सतत किया करते थे, इसलिए श्री कृष्ण के सारे शारीरिक निकटता को नहीं पाते हुए भी वो श्री कृष्ण के संग में ही थे। तो ये सिद्धांत है, इसलिए यदि हम भी इसी प्रकार से बारंबार भक्तों के संग में आके श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपने घर में भी आश्रम में भी हम गीता भागवत आदि इन ग्रंथों का नित्य नियम से अध्ययन करेंगे, कीर्तन में शामिल होंगे, यदि हम इन विधि निषेधों को गंभीरता से लेंगे तो अवश्य हमारे हृदय में भी ऐसे आकर्षण कृष्ण के प्रति आ जाएगा और फिर हमारे जीवन में एक आनंद आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। तो खैर, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अपने दिनचर्या में, अपने दिन के कार्य करते करते गोप गोपियां वृंदावन में सतत ऐसे गुणगान किया करती थीं श्री कृष्ण का, और इस प्रकार से कृष्ण का संग करती थीं। फिर आगे युगल गीत की शुरुआत होगी और गोपियां, जैसे हम पहले कह रहे थे, अलग अलग दलों में इधर कभी उधर, कभी इस समय कभी उस समय मिलती थीं वृंदावन के अलग अलग भाग में, और कृष्ण एक ही विषय होता था कृष्ण, तो उस समय वो क्या क्या कहती थीं एक दूसरे से, उनका वर्णन इस युगल गीत में है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि गोपियों ने आपस में क्या कहना शुरू कर दिया, तो आपको कल शाम आना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम